माहिरा की वजह से आयु की याददाश्त बीच में ही लटक गई थी, लेकिन नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में ही उसने अपने पिछले जन्म की कुछ यादें जी ली थी। वो यादों के दौर में थोड़ा आगे निकल आई थी। अब उसे जो याद था उस हिसाब से आयु और आरफ की शादी हो चुकी थी। आयु की गलतफहमी भी दूर हो चुकी थी कि उसने अनुष्का को नहीं मारा है। आरफ को इससे कुछ राहत मिली, लेकिन आयु को जो याद आया था वो भी कोई अच्छी यादें नहीं थी। पिछले जन्म में आयु का साथ देते हुए मंथन ने आयु और आरफ के सेपरेशन पेपर बनाए थे। आयु ने इसलिए आरफ से शादी की थी क्योंकि उसे लगता था उसने अनुष्का को मारा है। जैसे ही सच उसके सामने आया, आयु ने आरफ से अलग होने का सोचा। गुस्से में आरफ ने आयु को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया था, जहां कुछ लोग उसके साथ बुरा सलूक कर रहे थे। आरफ सही वक्त पर पहुंच गया और उसने आयु को बचा लिया था। आयु के साथ साथ आरफ के दिमाग में भी वो यादें ताज़ा हो गईं। उसने आयु के सामने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को सॉफ्ट किया और दोनों कान पकड़कर कहा, ओके, आई एम रियली सॉरी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मिसेस खुराना, तुम मुझसे अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। आयु से प्रॉमिस लेने के लिए आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आयु थोड़ा हिचकिचा रही थी। आरव ने ज़बरदस्ती आयु का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखते हुए कहा, तुम्हारा पता नहीं, पर मैं पहले दिन से ही क्लियर हूँ। तुम्हारा सच जानने के बाद भी मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़, मुझे धोखा मत देना। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। अचानक आयु का ध्यान अपने कपड़ों की तरफ गया तो उसने आरव से कहा, मुझे अच्छे से याद है, सोते टाइम मैंने तुम्हारा शर्ट पहना हुआ था। मेरे कपड़े किसने चेंज किए और यहाँ मेरे कपड़े कहाँ से आए? मैंने कबीर से मंगवाए थे और मैंने ही ये चेंज किए थे ताकि तुम आराम से सो सको, आरव ने बहाना बनाते हुए कहा। वहीं उसका जवाब सुनकर आयु उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, ये गलत बात है, तुम्हें मेरी परमिशन के बिना मेरे कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए थे। आरव ने बिना कुछ कहे बेपरवाही से सिर हिला दिया। इस वक्त उसके दिल को काफी सुकून महसूस हो रहा था। वो मन ही मन बोला, थैंक गॉड, इसे बाकी कुछ ना सही हमारी शादी याद आ गई है। अब कम से कम मैं इसे मिसेस खुराना बोल सकता हूँ, इसके पास आ सकता हूँ। आयु चुपचाप वहां पर बैठी हुई थी। अचानक आरव उसके करीब खिसका। वो आयु को काफी अजीब तरीके से देख रहा था। आयु ने उसकी नजरों की तपिश को महसूस किया तो नजरें झुकाकर कहा, ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहे हो ना तुम? कुछ नहीं, बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। अब जब शादी हो चुकी है, तुमने प्रॉमिस भी कर दिया है कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तो फिर ज्यादा कुछ ना सही, एक किस तो बनता है, आरव ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर आयु की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा नहीं था कि उनके बीच पहले भी किस नहीं हुआ था, लेकिन आरव सामने से डिमांडिंग हो रहा था तो आयु जल्दी से नामे सिर हिलाने लगी। उसके ऐसा करने पर आरव ने मुंह बना लिया था तो वो जल्दी से उसके पास खिसकी और गाल पर हल्का सा किस करके कहा, ये लो, कर दिया, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। कैसे हस्बैंड हो तुम? मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, देर से ही सही, लेकिन देखना, तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आरव ने जवाब दिया और उठकर आयु के लिए खाना ऑर्डर करने लगा। इतनी देर तक आयु बाथरूम में थी। जब तक नीचे से खाना आया तब तक आयु नहाकर तैयार हो चुकी थी। उसने व्हाइट कलर का स्लीवलेस फ्रॉक पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। आरव ने उसे देखकर स्माइल दी और अपने पास आने को कहा। आयु आरव के पास बैठने को हुई तभी आरव ने खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया था। आयु ने उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी। वो थोड़ा इरिटेट होकर बोली, तुम मुझे थोड़े बदले हुए से क्यों लग रहे हो? आई मीन, तुम तो इतने रोमांटिक नहीं थे, और मैंने देखा जब तुमने स्माइल की तुम्हारे गाल पर डिम्पल भी नहीं पड़ रहे थे। आरव ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, हाँ, मुझे अपने गालों के डिम्पल्स अच्छे नहीं लगते थे तो मैंने सर्जरी करवा ली। तुम्हें याद नहीं है क्या, शादी से पहले ही तो करवाई थी। आरव को उस वक्त जो भी सुझा उसने आयु को कह दिया। उसके इस जन्म और पिछले जन्म में बस इतना ही फर्क आया था कि पिछले जन्म में हंसते वक्त आरव के गाल पर हल्के डिम्पल पड़ते थे और इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं था। तभी आयु ने उसे पकड़ लिया था। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, अच्छा ठीक है, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देना, अब मैं अब ठीक हूँ। नहीं, तुम नहीं हो ठीक, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, आज पूरा दिन तुम रेस्ट करोगी और मेरे साथ बिताओगी, आरव ने आयु को रोकने के लिए कहा। आयु की उल्टी सीधी यादें आने की वजह से उसे काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। आयु को तो बस डिमांड करने भर की देर होती थी जबकि आरव फंस जाता था। ऐसे में वो नहीं चाहता था आयु बाहर निकले। आयु ने हाँ में सिर हिलाया और फिर आयु की गोद से उठकर उसके पास बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं आरव इस वक्त थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। वो आयु को खाते हुए देख रहा था। आरव ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, हद है यार, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? कितना अच्छा मोमेंट है कि ये वापस पहले की तरह रिएक्ट कर रही है, मुझे अपना समझ रही है, पर फिर भी दिल में घबराहट हो रही है कि कहीं इसके सामने सच ना आ जाए। आखिर कब तक मैं इसे इस कमरे में बंद करके रखूंगा? आरव की मुसीबतें कम हो ही नहीं रही थी। ऊपर से आयु का मोबाइल भी उसके पास था। अचानक उसके मोबाइल पर आशी का कॉल आए। आरव आयु से छुपकर कॉल रिसीव करने को हुआ, लेकिन तभी आयु ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख लिया था। आयु गुस्से में आरव को देखते हुए बोली, थोड़ी देर पहले कोई यहाँ वादे कर रहा था कि कभी छोड़कर मत जाना, और अब ये आशी कौन है? जहां तक मैं जानती हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई आशी नाम की लड़की नहीं है। तुम्हारी असिस्टेंट का नाम युवानी है और तुम्हारी उस बिजनेस पार्टनर का नाम माहिरा लूथरा। धोखा तो नहीं दे रहे हो ना तुम मुझे? मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? आरव ने उसे घूरते हुए कहा। ये लड़की आशी मेरी नई असिस्टेंट है। युवानी ने काम छोड़ दिया है किसी वजह के चलते। अगर असिस्टेंट है तो बात करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हो? चुपचाप यहीं पर बैठो और मेरी आंखों के सामने स्पीकर ऑन करके बात करोगी तुम, आयु ने सख्ती से कहा। उन दोनों की बातों के बीच आशी कॉल कट हो चुका था, तो आरव ने गाहत की सांस ली। उसने आयु की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, कट हो गया, अगली बार कॉल आएगा तो बात कर लूंगा। आयु अभी भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। आरव ने चुपके से आयु का फोन साइलेंट कर दिया था ताकि आशी का दोबारा कॉल आने पर आयु शक ना करे। आशी ने एक बार फिर से आयु को कॉल किया था, लेकिन जब आयु ने रिसीव नहीं किया तो इस बार उसने आरव के मोबाइल पर कॉल किया था। अब तो आयु का शक और भी पक्का होने लगा। वो आरव के कंधे पर मारते हुए बोली, अब तो मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है। तुम दो मोबाइल कब से रखने लग गए? पक्का उसी आशी का कॉल आ रहा होगा। आयु ने आरव के पास जाकर जबरदस्ती उसकी पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया था। उसने देखा वहां भी आशी का ही नाम फ्लैश हो रहा था। आरव कुछ कहता उससे पहले आयु ने कॉल रिसीव किया और मोबाइल स्पीकर पर डाल दिया था। सामने से आशी थोड़ा गुस्से में थी। वो आरव पर चिल्लाकर बोली, मुझे कुछ काम भी हो सकता है, इसी वजह से मैंने कॉल किया था। तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो जो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे?
आरव कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था, जबकि आयु उसे गुस्से में देखे जा रही थी। आरव ने बात को संभालते हुए कहा, जिस काम के लिए फोन किया है वो बताओ। मॉम तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो चाहती है कि डिनर के लिए हम सब मिलें, आशी ने जवाब दिया, जिसे सुनकर आयु का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा आरव और आशी रिलेशनशिप में है और आशी के पेरेंट्स उसे अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे थे। बात बिगड़ती उससे पहले आरव जल्दी से बोला, ठीक है, मैं आयु को लेकर पहुंच जाऊंगा, मुझे टाइम बता देना। हाँ, उसे भी बोल देना, मैडम कॉल नहीं उठा रही है, आशी ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। आयु हैरानी से आरव की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं किसी आशी को नहीं जानती हूँ। अरे, ये मेरे साइड की रिलेटिव है, तुम चिंता मत करो, हम वहां चलेंगे तो तुम सबको जान जाओगी, आरव ने बात बदलते हुए कहा। लेकिन तभी आयु बोली, अब तो मैं पक्का वहां जाना चाहूंगी और ये पता लगाना चाहूंगी आखिर ये आशी है कौन। आरव को लगा आयु इस बात को आसानी से जाने देगी, लेकिन वो डिनर पर जाने का सोचकर बैठी थी। इससे आरव की मुसीबतें और बढ़ती जा रही थीं। उधर डॉक्टर नेहा ने थेरेपी के लिए 4 से 5 दिन का टाइम मांगा था, तो इधर आरव 2 ही दिन में आयु के सामने सब कुछ छुपाते हुए काफी परेशान हो गया था। ऊपर से अब तो वो उसे अपने घर भी लेकर जाने वाला था। आई होप आप कहानी को एंजॉय कर रहे हो। बाकी बेचारा आरव काफी फंसा हुआ है। चलो जल्दी से आयु की याददाश्त वापस ले आएंगे ताकि आरव को दिक्कत ना हो। पढ़कर समीक्षा कर देना। अगले पार्ट पर मिलते हैं।